एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे तूफानी दौर की बात करने वाले हैं जिसने न सिर्फ एक देश बल्कि पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी, फ्रांसीसी क्रांति।
हाँ, फ्रांसीसी क्रांति। नाम सुनते ही शायद स्कूल की किताबें याद आती हों, पर इसकी कहानी आज भी उतनी ही अहम है क्योंकि इसने आज की हमारी राजनीति, हमारे अधिकार, यहाँ तक कि देश या राष्ट्र क्या होता है, इस सोच को गढ़ा है।
बिल्कुल। और इस पूरी उथल पुथल को समझने के लिए आज हमारे साथ हैं विलियम डॉयल की बहुत ही जानी मानी किताब द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन।
हाँ, ये किताब हमें ले जाती है उस दौर में जब लिबर्ते, एगालिते, फ्रटर्निते यानी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के नारे गूंजे थे।
लेकिन ये भी दिखाती है कि कैसे अच्छे इरादे भी, मतलब कभी कभी भयानक हिंसा और अराजकता में बदल सकते हैं।
सही कहा। और इसके सबक सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, वो आज भी हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, है ना?
बिल्कुल। तो चलिए पहले लेखक के बारे में थोड़ी बात कर लें, विलियम डॉयल।
जी, विलियम डॉयल ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर एमेरिटस हैं, एक ब्रिटिश इतिहासकार और 18वीं सदी के फ्रांस के विशेषज्ञ माने जाते हैं। लगभग आधी सदी से इसी विषय पर काम कर रहे हैं और उन्हें ब्रिटिश एकेडमी का फेलो भी चुना गया है, जो अपने आप में एक बड़ा सम्मान है।
और एक खास बात यह है कि डॉयल इतिहास के उस संशोधनवादी यानी रिविजनिस्ट स्कूल से हैं।
हाँ, इसका मतलब क्या है? मतलब ये उन इतिहासकारों में से हैं जो क्रांति की जो पुरानी मार्क्सवादी व्याख्या थी ना,
कि ये बस अमीर बुर्जुआ और पुराने सामंती वर्ग की लड़ाई थी।
हाँ, उसी को चुनौती देते हैं। डॉयल कहते हैं कि भाई, कहानी इतनी सीधी नहीं है, इसमें कई परतें हैं।
अच्छा, तो उनका नजरिया अलग कैसे है?
कई वजह हैं। एक तो ब्रिटिश होने के नाते वो थोड़ा दूरी से शायद ज्यादा वस्तुनिष्ठ होकर फ्रांस के इतिहास को देख पाते हैं। दूसरा, उनका सारा काम फ्रांस के आर्काइव्स में बहुत गहरी रिसर्च पर आधारित है। वो ये नहीं मानते कि ये सिर्फ वर्ग संघर्ष था।
तो फिर क्या था?
वो कहते हैं कि इसमें राजनीति, नए विचारों और सबसे ज्यादा उस वक्त के हालात का बहुत बड़ा रोल था। वो इस पर जोर देते हैं कि क्रांति कोई पहले से तयशुदा योजना नहीं थी, वो तो बस कई घटनाओं, हादसों, गलतफहमियों का नतीजा थी।
हाँ, और उनका वो तर्क भी तो है कि क्रांति ने क्रांतिकारियों को बनाया, ना कि क्रांतिकारियों ने क्रांति को। मतलब लोग हालात के साथ कट्टर होते गए।
बिल्कुल, ये बहुत दिलचस्प नजरिया है।
तो चलिए अब सीधे किताब पर आते हैं, द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये हमें क्या बताती है?
देखिए, ये किताब क्रांति का एक बहुत ही विस्तृत और संतुलित ब्यौरा देती है। कोशिश करती है कि जो सुनी सुनाई बातें, जो मिथक हैं, उनसे परे जाकर तथ्यों को देखें, विश्लेषण करें।
और ये सिर्फ इतिहासकारों के लिए नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अकादमिक लोगों के लिए तो है ही, पर आम पाठक भी जो इस बड़ी घटना को समझना चाहते इसे पढ़ सकते हैं।
और इसका जो मुख्य तर्क है वो क्या है?
डॉयल साफ कहते हैं कि क्रांति किसी बड़े प्लान या वर्ग संघर्ष का नतीजा नहीं थी, बल्कि जो पुरानी व्यवस्था थी जिसे आंसियन रिजीम कहते हैं।
हाँ, वो जो क्रांति से पहले का फ्रांस था।
जी, वो अंदर से ढह रही थी, खासकर सरकार का भारी कर्ज और राजनीतिक फैसले ना ले पाने की हालत। एक तरह का पावर वैक्यूम बन गया था,
शक्ति का खालीपन।
हाँ, और क्रांति उसी खालीपन को भरने आई।
और जो हिंसा हुई, आतंक का राज,
डॉयल उसे भी किसी सोची समझी साजिश के हिस्सा नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये उस वक्त के हालात का नतीजा था, जैसे बाहरी युद्ध का खतरा, देश के अंदर गृह युद्ध, राजनीतिक गुटबाजी, नए विचारों का जुनून।
मतलब ये सब अनपेक्षित परिणाम थे।
हाँ, परिस्थितियों ने नेताओं को उस रास्ते पर धकेल दिया, ऐसा उनका मानना है।
तो ये किताब हमें एक सफर पर ले जाती है।
बिल्कुल।
पुरानी व्यवस्था की समस्याओं से शुरू होकर,
बिल्कुल,
फिर 1789 की वो नाटकीय घटनाएं, संवैधानिक राजतंत्र बनाने की कोशिश, उसकी नाकामी, फिर युद्ध, गणतंत्र की स्थापना,
और फिर वो आतंक का दौर, थर्मिडोरियन प्रतिक्रिया, डायरेक्टरी सरकार,
और अंत में नेपोलियन का उदय। और ये सिर्फ पेरिस की कहानी नहीं है,
ये भी जरूरी है।
हाँ, डॉयल प्रांतों की बात भी करते हैं, वेंडी जैसे इलाकों में हुए गृह युद्ध की और यूरोप पर पड़े असर की भी। मतलब एक पूरी बड़ी तस्वीर।
जी हाँ।
तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। पहला हिस्सा, पुरानी व्यवस्था, डॉयल इसकी चीरफाड़ कैसे करते हैं?
देखिए, हम अक्सर सुनते हैं तीन वर्ग थे, पादरी, कुलीन, आम लोग। डॉयल कहते हैं ये बहुत सरलीकरण है, असलियत में समाज अनगिनत विशेषाधिकारों का एक जाल था। कौन टैक्स देगा, कौन नहीं, किसके क्या अधिकार होंगे, सब जन्म और परंपरा पर आधारित था।
मतलब कोई तर्क नहीं था, बस चला रहा था।
हाँ, और हर वर्ग के अंदर भी बहुत असमानता थी। अमीर कुलीन भी थे, गरीब भी। तीसरे वर्ग में अमीर व्यापारी भी थे, बिल्कुल गरीब किसान भी।
तो असली झगड़ा सिर्फ वर्गों के बीच नहीं था।
डॉयल कहते हैं, असली तनाव इस अन्यायपूर्ण विशेषाधिकार वाली व्यवस्था से था, जो किसी के लिए फायदेमंद थी, किसी पर बोझ।
और इसी माहौल में वो ज्ञानोदय, एनलाइटनमेंट के विचार भी आ रहे थे।
हाँ, पर डॉयल यहाँ भी संतुलित है। वो ये नहीं कहते कि वोल्टेयर या रूसो ने बटन दबाया और क्रांति हो गई।
अच्छा।
लेकिन उनके विचारों ने लोगों को सवाल पूछना सिखाया, चर्च पर, राजा पर, पुरानी रीतियों पर, एक पब्लिक स्फिया बना। लोग बहस करने लगे, माहौल तैयार हुआ।
लेकिन जो आखिरी चोट थी वो तो आर्थिक संकट की थी।
बिल्कुल। और यहाँ डॉयल एक दिलचस्प बात बताते हैं, फ्रांस देश गरीब नहीं था, सरकार गरीब थी।
ऐसा क्यों?
क्योंकि टैक्स सिस्टम एकदम बेकार था। जो दे सकते थे, यानी पादरी और कुलीन, उन पर टैक्स था ही नहीं या बहुत कम था। सारा बोझ आम लोगों पर।
और ऊपर से युद्धों का खर्चा।
हाँ, खासकर अमेरिका की आजादी की लड़ाई में फ्रांस ने बहुत पैसा लगाया, कर्ज बढ़ता गया, तो ये मूल रूप से सरकार की नाकामी थी।
तो ये थी पृष्ठभूमि। अब ये चिंगारी भड़की कैसे, क्रांति की शुरुआत?
जब सरकार ने सुधार की कोशिश की, कैलॉन, ब्रियन जैसे मंत्रियों ने अमीरों पर टैक्स लगाने की बात की, तो कुलीन वर्ग ने ही मना कर दिया। इसे अभिजात विद्रोह कहते हैं।
उन्होंने सोचा वो राजा को दबा लेंगे।
हाँ, पर अनजाने में उन्होंने राजशाही को ही कमजोर कर दिया और तीसरे वर्ग के लिए दरवाजा खोल दिया।
फिर वो एस्टेट्स जनरल बुलाई गई 17.5 साल बाद।
जी।
पैसे का संकट अब राजनीतिक संकट बन गया। सवाल उठा, असली मालिक कौन, राजा या राष्ट्र? और उसी समय वो कायदे दोलियांस, शिकायतों की लिस्ट तैयार हुई।
हाँ, पूरे देश से लोगों ने अपनी मांगे, अपनी शिकायतें भेजी, और आबे सीएस जैसे लोगों ने कहा, तीसरा वर्ग ही सब कुछ है। इससे जोश भर गया।
और फिर आया 1789। क्या साल था।
बिल्कुल। तीसरे वर्ग ने खुद को नेशनल असेंबली घोषित किया, टेनिस कोर्ट की शपथ ली।
फिर 14 जुलाई, बास्तील का पतन। डॉयल कहते हैं इस हिंसा ने असेंबली को बचाया।
हाँ, फिर गांवों में वो ग्रेट फियर फैला, और 4 अगस्त की रात को तो कमाली हो गया, सारे सामंती विशेषाधिकार खत्म। एक झटके में सदियों पुरानी व्यवस्था ढह गई।
इसके बाद फ्रांस को दोबारा बनाने का काम शुरू हुआ।
जी, नेशनल असेंबली 1789-91 ने मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा जारी की, प्रशासन को सुधारा, वो डिपार्टमेंट्स बनाए, एक संवैधानिक राजतंत्र का संविधान तैयार किया।
लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा।
लेकिन फिर तभी एक बड़ी गलती हुई, जिसे डॉयल बहुत अहम मानते हैं, पादरियों का नागरिक संविधान।
इसने क्या किया?
इसने चर्च को राज्य के अधीन लाने की कोशिश की। पादरियों को सरकार के प्रति वफादारी की शपथ लेनी पड़ी।
और इससे लोग बट गए
बुरी तरह। बहुत से लोग धर्म और क्रांति के बीच फंस गए। इसने क्रांति के खिलाफ एक बड़ा तबका खड़ा कर दिया।
और फिर राजा ने भागने की कोशिश की।
हाँ, जून 1791 में वो वॉरन में पकड़े गए। इस घटना ने लोगों का राजा पर से भरोसा ही उठा दिया।
संवैधानिक राजतंत्र का सपना टूटने लगा।
माहौल गर्म हो गया।
और इसी माहौल में अप्रैल 1792 में युद्ध छिड़ गया, ऑस्ट्रिया के खिलाफ। डॉयल मानते हैं कि इस युद्ध ने क्रांति को और ज्यादा कट्टर बना दिया।
युद्ध में हार और राजा पर शक, इससे हुई दूसरी क्रांति अगस्त 1792 में।
जी, भीड़ ने महल पर हमला किया, राजतंत्र खत्म। फिर वो सितंबर नरसंहार हुए पेरिस की जेलों में।
और फिर फ्रांस गणतंत्र बन गया।
हाँ, और यहीं से आतंक के राज, रेन ऑफ टेरर की जमीन तैयार हुई।
डॉयल आतंक के राज को कैसे समझाते हैं?
वो इसे सिर्फ खून खराबा नहीं कहते, वो कहते हैं कि ये उस वक्त के भयानक हालात की उपज थी।
मतलब?
देश पर बाहर से हमला, अंदर गृह युद्ध। सरकार को लगा कि देश बचाने के लिए सख्ती जरूरी है। वो सार्वजनिक सुरक्षा समिति बनी,
जिसके पास लगभग तानाशाही अधिकार थे। हाँ, उन्होंने क्रांति के दुश्मनों को खत्म करने के लिए गिलोटिन का खूब इस्तेमाल किया। हजारों लोग मारे गए।
लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चला।
नहीं, जो जैकोबिन गुट इसे चला रहा था उनमें ही फूट पड़ गई। रोबेस्पियर ने पहले हेबर्टिस्ट, फिर डेंटोनिस्ट गुट को खत्म किया।
वो खुद सबसे ताकतवर बन गया।
हाँ, पर उसकी तानाशाही से लोग डर गए, और आखिरकार जुलाई 1794 में 9 थर्मिदोर को उसी के साथियों ने उसे हटा दिया और गिलोटिन पर चढ़ा दिया। आतंक खत्म हुआ।
आतंक के बाद थर्मिडोरियन प्रतिक्रिया।
जी, कट्टरपंथ से वापसी। 1795 में डायरेक्टरी सरकार बनी, 5 डायरेक्टर, पर यह बहुत कमजोर और भ्रष्ट निकली, सेना पर निर्भर थी।
और इसी अस्थिरता में एक सितारा चमका, नेपोलियन बोनापार्ट।
बिल्कुल, डॉयल कहते हैं नेपोलियन खुद क्रांति की ही पैदाइश था, अपनी काबिलियत से आगे बढ़ा था। इटली और मिस्र की जीतों ने उसे हीरो बना दिया।
और अंत में नवंबर 1799 18 ब्रूमेर,
नेपोलियन ने तख्ता पलट करके डायरेक्टरी खत्म कर दी। डॉयल के हिसाब से यहीं पर क्रांति एक तरह से खत्म हो गई।
नेपोलियन ने अराजकता खत्म की पर आजादी भी?
हाँ, वो क्रांति का अंत करने वाला भी था और उसके कुछ नतीजों जैसे कानूनों को सहेजने वाला भी।
तो इस पूरी कहानी से डॉयल जो मुख्य बातें या संदेश निकालते हैं वो क्या हैं?
एक बहुत अहम बात है, आकस्मिकता बनाम अनिवार्यता, कंटिंजेंसी ओवर इनेविटेबिलिटी। मतलब क्रांति कोई तयशुदा चीज नहीं थी।
हाँ, कि ऐसा होना ही था, ऐसा नहीं था।
बिल्कुल, ये कई फैसलों, संयोगों, गलतियों का नतीजा थी। अगर कुछ चीजें अलग होती तो शायद कहानी बिल्कुल अलग होती।
दूसरी बात, भीतर से पतन, कोलैप्स फ्रॉम विद इन।
जी, पुरानी व्यवस्था को किसी ने हराया नहीं, वो अंदर से ही इतनी खोखली थी, कर्ज, राजनीतिक नाकामी, अन्याय, कि खुद ही ढह गई। क्रांति तो उस खाली जगह में आई।
तीसरा सबक, कार्यों के अनपेक्षित परिणाम।
यस, हाँ, नेताओं ने अच्छे इरादों से फैसले लिए पर नतीजे उल्टे पड़ गए, जैसे वो चर्च वाला कानून या युद्ध छेड़ने का फैसला। ये हमें आज भी सोचना चाहिए।
बिल्कुल, और ये भी कि क्रांति ने क्रांतिकारियों को बनाया, रेवोल्यूशन क्रिएटेड रेवोल्यूशनरीज।
सही बात है, 1789 में लोग सिर्फ सुधार चाहते थे पर हालात ऐसे बने कि लोग कट्टर होते गए, घटनाओं के साथ बहते गए।
और हाँ, हिंसा की केंद्रीयता, सेंट्रैलिटी ऑफ वायलेंस, ये भी एक कड़वा सच है।
जी, चाहे वो जनता की हिंसा हो, वास्तिल, या सरकार की आतंक, डॉयल दिखाते हैं कि ये घटनाओं को आगे बढ़ाने वाली ताकत थी।
और इन सब के बीच से आधुनिक राजनीतिक संस्कृति का जन्म हुआ।
बिल्कुल, लोकप्रिय संप्रभुता, राष्ट्रवाद, नागरिकता, लेफ्ट राइट की राजनीति, ये सब यहीं से निकला।
मानवाधिकारों की बात भी यहीं से आई।
हाँ, लेकिन साथ ही ये भी पता चला कि विचारधारा के नाम पर राज्य कितना क्रूर हो सकता है। तो इसकी विरासत दोधारी है।
किताब में कई यादगार विचार हैं, जैसे पहला, क्रांति प्लान से नहीं, सरकार के दिवालियापन और राजनीतिक संकट से शुरू हुई।
हाँ,
मतलब व्यवस्था की नाकामी।
हाँ,
दूसरा, ज्ञानोदय ने क्रांति नहीं की पर सोचने का नया तरीका दिया, विचारों ने जमीन तैयार की पर वो सीधी वजह नहीं थे।
तीसरा, आतंकराज पागलपन नहीं बल्कि मुश्किल हालात में सरकार की एक क्रूर प्रतिक्रिया थी, उसे उसके संदर्भ में समझना जरूरी है।
बिल्कुल, और चौथा, वो विडंबना, आजादी की लड़ाई तानाशाही में खत्म हुई पर आधुनिक राजनीति की नींव रखी, जिसमें उम्मीद भी है और खतरा भी, बहुत जटिल विरासत है।
तो ये तो इतिहास हुआ, पर आज के लिए इसका क्या मतलब है, क्या सीख सकते हैं हम?
एक तो शायद राजनीतिक अस्थिरता के बारे में, जब सरकार आर्थिक मुश्किल में हो, अमीर तबका साथ न दे और आम लोगों में गुस्सा हो, ये कितना विस्फोटक हो सकता है।
हाँ,
और कैसे किसी एक विचारधारा को ही सब कुछ मान लेना खतरनाक हो सकता है।
बिल्कुल, जब लगता है कि सिर्फ हम ही सही हैं तो दूसरों की सुनने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। आज भी ये ध्रुवीकरण हम देखते हैं ना, ये शायद उसी आतंक के राज की एक हल्की सी गूंज हो।
और नीतियों के अनचाहे नतीजे, बड़ा बदलाव लाने से पहले हर पहलू पर सोचना कितना जरूरी है।
जी हाँ, वरना अच्छे इरादे भी भारी पड़ सकते हैं। और वो इमरजेंसी वाली बात भी,
कि कैसे संकट के नाम पर मिले अधिकार स्थायी बन जाते हैं।
हाँ, ये फिसलन भरी ढलान होती है। और ये भी समझ आता है कि मुश्किल वक्त में संस्थाएं बनाना, सहमति बनाना कितना कठिन पर कितना जरूरी है।
अगर मैं कहूँ, मुझे इस किताब से सबसे ज्यादा ये लगा कि इतिहास कितना अप्रत्याशित होता है, चीजें हमारी प्लानिंग से नहीं चलती।
सही बात है, और बड़े बदलावों के नतीजे कितने मिले जुले होते हैं, कोई साफ जीत हार नहीं होती अक्सर।
मेरे लिए शायद वो विरोधाभासी विरासत वाली बात सबसे अहम है, एक ही घटना कैसे आजादी की प्रेरणा भी है और तानाशाही का खतरा भी।
और डॉयल का काम इसीलिए जरूरी है कि वो इस मुश्किल कहानी को इतने साफ संतुलित तरीके से रखते हैं, बिना किसी तरफ झुके।
तो श्रोतागण, हम आपको इसी विचार के साथ छोड़ते हैं, क्या इतिहास खुद को दोहराता है या फ्रांसीसी क्रांति जैसी घटना अपने आप में अनोखी थी?
और आज हम अपने समाजों में आजादी और व्यवस्था के बीच वो नाजुक संतुलन कैसे बनाए रख सकते हैं?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।